समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज का हमारा विषय है रक्तदान, एक अमूल्य योगदान। इस विषय पर बातचीत करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप महानिदेशक डॉक्टर मेघा प्रवीण खोबरागड़े और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल पाटीदार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, अब आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड और 2331444 और दूसरे नंबर 2342105 पर फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। आप दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है।
धन्यवाद।
और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि रक्तदान की जो प्रक्रिया है, किस तरह के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, ये कैसी प्रक्रिया है और इसका लाभ क्या क्या है और क्यों ये आवश्यक है?
तो मैं कहना चाहता हूँ कि रक्तदान की प्रक्रिया बहुत ही साधारण प्रक्रिया है। इसमें कोई भी 18 साल से 65 साल की उम्र की आयु के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। जो भी पूरी तरह से स्वस्थ हो, अभी उन्हें निकट समय में कोई बीमारी नहीं हो और कोई लंबी बीमारी नहीं चली हो। रक्तदान बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिसे केवल ही रक्त से ठीक हो सकती है, उसके अलावा उसके पास कोई और उपाय नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि ये रोड पे इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, उसमें उनके रक्त बहाव हो जाता है, तो उनकी रक्त की पूर्ति के लिए मानव का रक्त ही चाहिए और उसमें कुछ काम नहीं होता है। और कोई प्रसूता स्त्री है जिसमें उसके बच्चे की भी जरूरत चलनी है लेकिन उसके खुद का रक्त उसकी बॉडी में कम है, तब वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। कैंसर के मरीज होते हैं जिनमें कैंसर की वजह से उनकी बॉडी का जो रक्त है वो बहुत कम हो जाता है, वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बाकी आप हार्ट की सर्जरी के बारे में सुनते होंगे, जो बहुत ही लंबी सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है, तो हार्ट सर्जरी में भी बहुत सारा रक्त का लॉस होता है, तो उसको पूरा करने के लिए भी आपको रक्त की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है।
और इस बीच हिसार हरियाणा से हमारे आज के पहले श्रोता राजेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछिए आपका।
निखिल जी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी, विशेषज्ञों को भी नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मेरे में खून की मात्रा 12 ग्राम से कम है, तो क्या मैं खून रक्त दान कर सकता हूँ? इसके बारे में जानना तो चाहता हूँ। और ना ही कोई मैंने कोई ऐसी बीमारी है कोई, मतलब जो ना शुगर बीपी या कोई हार्ट अटैक की, तो क्या इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि
डॉक्टर गोपाल आपके प्रश्न का उत्तर
देंगे। नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका खून जैसे आप बता रहे हैं 12 ग्राम से कम है, तो वो थोड़ा सा आप इस भी नहीं कर सकते हैं। हमें रक्तदान के लिए कम से कम 12.5 ग्राम खून चाहिए और 12.5 ग्राम या उससे ऊपर का खून चाहिए। तो अभी आप जब आपका खून 12.5 ग्राम से ऊपर हो जाता है तब आप आराम से रक्तदान कर सकते हैं।
और डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ये भी कि महिलाओं और पुरुषों में क्या कोई फर्क होता है इसमें, कि रक्तदान में महिलाओं के लिए ये लेवल सेट है, पुरुषों के लिए ये अलग लेवल सेट है?
नहीं, दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए 12.5 ग्राम मिनिमम चाहिए तभी आप रक्तदान कर सकते हैं
जी। डॉक्टर मेधा, डॉक्टर मेघा, अगर हम सरकार के प्रयासों की बात करें रक्तदान के सिलसिले में, तो किन प्रयासों का आप यहाँ उल्लेख करना चाहेंगी?
सरकार कंटिन्यूअसली वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन पे फोकस कर रही है और यहाँ मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, रिसेंटली हमने वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन गाइडलाइन को भी पब्लिश किया है और जो हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट है 14.6 मिलियन यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार हमने पिछले साल 14.6 मिलियन यूनिट को कलेक्ट कर लिया है और जो वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन है वो हमारा आज के तारीख में 75% है। और मैं यहाँ सभी को निवेदन करना चाहूँगी कि हमारा भारत सरकार का जो प्रयास है कि वो हम 100% वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन करना चाह रहे हैं ताकि मरीजों को रिप्लेसमेंट डोनेशन की आवश्यकता ना पड़े और कंटिन्यूअसली हम इसी में आईसी के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, एवी फिल्म्स बना रहे हैं और बहुत सारे भारत सरकार के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं ताकि हम वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन को 100% तक ले आए।
शिमला से आज के हमारे दूसरे श्रोता हैं राकेश, जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं। राकेश जी, प्रश्न पूछिए।
जी नमस्कार।
नमस्कार,
मेरा प्रश्न ये है कि जब हम रक्तदान करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या जो है सावधानी रखनी चाहिए जब हम रक्तदान करते हैं।
जी डॉक्टर गोपाल
जी। जी राकेश जी, जब भी आप रक्तदान करने जाते हैं तो उसमें खास सावधानी रखनी है कि 4 घंटे पहले आपने कुछ खाना खा के जाना है, खाली पेट रक्तदान करने नहीं जाना है। और आपने रक्तदान करने से पहले और रक्तदान करने के बाद आपने पानी पीना है, एटलीस्ट रक्तदान करने से 15 मिनट पहले, रक्तदान करने के बाद कंटिन्यूसली दिन भर आपने पानी पीना है। क्योंकि रक्त में आपके रक्त की मात्रा जो 350 ml या 450 ml निकलती है तो वो पानी के द्वारा आपकी 24 घंटे में पूरी हो जाती है, तो आपको उसमें पानी पीना है। उसके बाद रक्तदान करने के बाद आपको थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतनी है, जैसे कि आपने कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं पीना है, कोई हैवी वर्क नहीं करना है और आपने कोई गाड़ी तुरंत ही रक्तदान करने के बाद कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है।
जी डॉक्टर मेघा, बहुत से लोगों में ये एक भ्रांति सी फैली हुई है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली 18 से 65 साल के उम्र तक के लोगों को रक्तदान किया जा सकता है। आपका वजन जैसे डॉक्टर गोपाल सर ने बताया है कि 12.5 ग्राम होना चाहिए और आपका वजन 45 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और आप शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं।
जी, और पुणे से श्रीपद झाकड़े हमारे साथ फोन लाइन पर अब हैं। श्रीपद जी, आपका सवाल क्या है आज का?
हाँ जी, हेलो
जी। जी सवाल पूछिए।
नमस्कार सर।
नमस्कार।
हाँ, मेरा सवाल ये है कि रक्तदान करने से पूर्व मतलब जनरल हेल्थ चेकअप कराना जरूरी होता है या खाली खून की जांच करवाने से मतलब रक्तदान कर सकते हैं?
जी डॉक्टर गोपाल आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।
जी, रक्तदान करने से पहले वैसे आपको पूरा चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी भी रक्तदान केंद्र में रक्तदान करने जाते हैं तो वो आपका चेकअप करते हैं और उसमें वो आपके खून की जांच भी उसी समय करते हैं। तो अगर आप पहले से जांच ना करवा के जाएं तो भी आपकी वहाँ पे खून की जांच होगी, आपका पूरा मेडिकल चेकअप होगा, आपसे पूरे सवाल पूछे जाएंगे, आपको कोई बीमारी तो नहीं है या लंबी बीमारी तो नहीं चल रही है, उसके बाद ही पूरे तरह से संतुष्ट होकर आपसे रक्तदान लिया जाता है।
डॉक्टर गोपाल, एक प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि यदि कोई भी एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो किस किस तरह की समस्याओं से वो बच सकता है, मतलब क्या क्या उसको परेशानियां नहीं हो सकती अगर वो रक्तदान करता है?
देखो, रक्तदान करते हैं तो खासतर ये होता है कि अगर किसी की बॉडी में ऑलरेडी रक्त की मात्रा ज़्यादा है तो वो रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो रक्तदान करने से अगर वो रक्त थोड़ा सा बॉडी से निकलता है तो वो ब्लड का जो फ्लो होता है वो इजी होता है। और कुछ स्टडीज़ में, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि रक्तदान करने से उनको जो हार्ट अटैक आते हैं उनके इंसिडेंस कम होते हैं, लेकिन अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है। बट हाँ, व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, ताज़ा महसूस करता है रक्तदान के बाद।
जी, बेंगलोर से श्रीकांत हमारे साथ है फोन लाइन पर। श्रीकांत जी, आपका प्रश्न क्या है?
नमस्कार जी। नमस्कार।
नमस्कार।
हेलो
जी, प्रश्न पूछिए आपका।
मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह फैक्ट और इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, मैं फैक्ट की बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में जितने रक्त की जरूरत है उसका सिर्फ 2% रक्त मिलता है। अगर कुछ ऐसा किया जाए कि रक्त बैंक में ही लोग जाके अपना रक्त दें और उनको उसके एवज में कुछ मिले तो इतने कैंप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो देते हैं उनका दान कहा जाता है और जो लेते हैं उनको खरीदना पड़ता है। तो भाई साहब, देने वाले को भी कुछ मिले तो बहुत रक्त।
जी डॉक्टर मेघा, आपके प्रश्न का उत्तर देंगी।
जो रक्तदान की जो भावना है वो है स्वैच्छिक रक्तदान, जिसमें हम निस्वार्थ रूप से इस मानवता के कार्य के लिए जुड़ते हैं और किसी के जीवन की ज्योत को जलाने का प्रयास करते हैं। तो जो बेसिक हमारा जो उद्देश्य है रक्तदान का, अगर हम लेन देन की बात करते रहेंगे तो फिर वो जो बेसिक उद्देश्य के साथ हम इस प्रोग्राम को चला रहे हैं वो मतलब ये हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का हमें लेन देन की कोई बात करनी चाहिए कि आप स्वैच्छिक रूप से आइएगा और रक्तदान कीजिएगा। कभी ना कभी आपके रिश्तेदारों को भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई रक्तदान देने आएगा।
यानी कह सकते हैं कि स्व इच्छा होना रक्तदान के लिए बहुत जरूरी है। एक मानवता की भावना के साथ हम सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित होना चाहिए।
जी, जी।
और दरभंगा बिहार से हमारे रेगुलर लिसनर है मोहन पासवान जी, जो हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। मोहन जी, सवाल पूछिए आपका।
नमस्कार सर।
जी नमस्कार, सवाल पूछिए।
सर, रक्तदान अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लैब प्रदान के तहत क्या सब किए जा रहे हैं सर? दूसरा सर, कि जानवर का विकसित रूप मानव है सर।
जी।
मानव और जानवर किसी न किसी रूप में वनस्पति पर निर्भर है, तो फिर जानवर का खून आदमी को क्यों नहीं चढ़ता है सर? क्या इस पर शोध किए जा रहा
जी,
है
सर? आपका जो प्रश्न है उसका जवाब डॉक्टर मेघा भी देंगे और डॉक्टर गोपाल भी देंगे, तो पहले मैं मेघा जी से चाहूंगा कि वो इनके प्रश्न का उत्तर दें।
भारत देश एक हमारी जो संस्कृति है, आप सब मेरे वाक्य से ये करेंगे कि हमने हमेशा देने में विश्वास किया है। और हमारे देश में जब भी रिसेंटली भी मैं बताना चाहूँगी कि जब पहलगाम का जो ये हुआ था, तो हमारे बहुत सारे वॉलेंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशंस और वॉलेंटियर्स आगे आके उन्होंने ब्लड डोनेशन किया था। तो हमारे देश में आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रक्त की ज़रूरत पड़ी हो और हमें रक्त नहीं मिला हो। तो जब हम मानवता के रूप में एक दूसरे के साथ हमेशा भाई बहन की तरह खड़े रहते हैं, तो हम जानवर को क्यों इसके लिए ये करें?
जी डॉक्टर गोपाल जो ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि जानवर और मनुष्य में काफ़ी समानताएं हैं, तो एक दूसरे का ब्लड क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता?
हाँ हाँ जी पासवान जी, तो जानवर और मनुष्य में समानताएं नहीं हैं, और रक्त तो बहुत ही अलग अलग है। इवन आप कहें कि दो मनुष्यों का रक्त भी कभी कभी समान नहीं होता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, अगर आपने सुना हो, तो वो भी हम आपस में एक दूसरे को नहीं चढ़ा सकते हैं। और जानवर के रक्त में तो और भी ज़्यादा भिन्नताएँ होती है मनुष्य के रक्त से, तो ऐसा ना कभी कोई हुआ है प्रयास रिसर्च का, और ना ही ऐसा कभी हो सकता है।
दिल्ली से धर्मवीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब धर्मवीर जी, आपका सवाल क्या है?
नमस्कार जी।
जी नमस्कार,
मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार।
तब जैसे कई बार आकाशवाणी में भी अनाउंस होता है कि इस ब्लड का खून चाहिए, वो ऐसा खून सा ब्लड ग्रुप होता है जो बहुत कम से कम इंसानों में पाया जाता है, जिसकी कमी महसूस होती है। ऐसे ब्लड को क्या आप ब्लड बैंक में अपने अकाउंट्स में कुछ ऐसा रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बनाए रखते हैं? और अगर कोई व्यक्ति अपने परिचित को खून देता है, अगर वो खून देने वाला अगर नशा करता है, तो उस व्यक्ति को जो खून चढ़ाया जा रहा है, जो उसके जो बुराइयां हैं उस ब्लड से उसके अंदर पहुंचती है क्या? ये भी कुछ
इंटरेस्टिंग से सवाल पूछ रहे हैं गोपाल जी, ये धर्मवीर जी।
हाँ जी, हाँ जी धर्मवीर जी, तो आपका पहला सवाल जो है कि कौन सा सबसे मतलब कह सकते हैं कि लेस प्रीवेलेंस ब्लड ग्रुप है, तो उसमें जो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं, नेगेटिव ब्लड ग्रुप और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर आपने सुने होते हैं, तो नेगेटिव सारे ही सबसे कम पाए जाते हैं, और उनमें भी ए बी नेगेटिव सबसे ही कम पाया जाता है, जो ऑलमोस्ट 0.3% लोगों में होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कम पाया जाता है, तो उसके रक्तदाता भी बहुत कम आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जितने उनके रक्तदाता आए उनको हम रक्तदान को अपने रक्त केंद्र में रखें, लेकिन उसकी भी एक लाइफ होती है, 42 दिन से ज़्यादा हम किसी रक्त को अपने रक्त केंद्र में नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि बार बार उस तरह के डोनर आएँ, या अगर कोई रक्तदाता इस ग्रुप का निकलता है तो हम उनकी डिटेल रख लेते हैं, ताकि जब भी किसी मरीज को रिक्वायरमेंट हो हम जो बुला के दे सकते हैं। तो ये है।
और गुरुनाथ जी हैं ठाणे महाराष्ट्र से हमारे साथ में। गुरुनाथ जी स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न पूछिए आपका।
सर नमस्ते।
नमस्ते।
सर मेरा क्वेश्चन है सर, जो ग्रुप के बारे में, ब्लड के ग्रुप कितने होते हैं, मतलब जो ए बी होता है वो तो मतलब मैक्सिमम यही लोगों का होता है, और जो डिफिकल्ट होता है जो आसानी से मिलता नहीं उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। और हमारे देश में जो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है, कार्यक्रम तो बहुत सारे चलते हैं रक्तदान के, क्या है वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है? थैंक यू सर।
अभी इन्होंने जो सवाल पूछा उससे पहले जो हमारे श्रोता था उन्होंने भी लगभग वही सेम क्वेश्चन पूछा था,
हाँ,
लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी चाह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी के बारे में,
अवेलेबिलिटी के बारे में चाह रहे हैं। तो पहले तो रक्त ग्रुप आपने मान लिए थे, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, तो प्राइमरली अगर हम देखें तो ए बी ओ और ए बी चार ग्रुप होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 8 ग्रुप हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो आपने सुना होगा वहाँ पे बॉम्बे टाइप का ब्लड ग्रुप भी होता है, जो बहुत ही रेयर ग्रुप होता है, और स्पेशली वो महाराष्ट्रियन लोगों में और बॉम्बे के आसपास के लोगों में पाया जाता है। तो ये है, दूसरा है रक्त की अवेलेबिलिटी का सवाल जो पूछा था। रक्त की अवेलेबिलिटी अभी तक हमारी पूरी हो रही है, जो भी हमारे स्वैच्छिक रक्तदाता हैं उनकी मदद से, या कभी कभी हमें होता है कि मरीज के रिश्तेदारों से भी रक्त लेना पड़ता है, तो जितने भी हमें रिक्वायरमेंट होती है मरीजों को रक्त की, हम उसमें पूरी होती है, लेकिन हमें और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि मरीज के साथ वाले जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे हमें रक्त लेने की ज़रूरत ना पड़े, और स्वैच्छिक लोग रक्तदान करें और मरीजों की सहायता करें।
और जो रेयर ब्लड ग्रुप के बारे में मैं, और भारत सरकार जो जो प्रयास है वो उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगी। हमारा जो ई रक्तकोश पोर्टल है उस पर हमने पिछले साल से एक रेयर ब्लड ग्रुप का एक इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दिया है, और हमने सभी राज्यों को बोला है, सभी ब्लड सेंटर्स को बताया है कि जब भी आपके पास रेयर ब्लड डोनर का डेटाबेस या जो भी आते हैं तो उनका डेटाबेस आप ज़रूर उसमें इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ई रक्तकोश पोर्टल पे अभी हम भी देख सकते हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट पे कि कौन से रेयर ब्लड ग्रुप के मतलब रजिस्टर्ड है हमारे पास वॉलेंटियर्स, ताकि इमरजेंसी में अगर किसी को आवश्यकता पड़े तो हम उनको इस सुविधा का फायदा करा सकते हैं।
जी, और ज्योतिनी दिल्ली से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, आपका प्रश्न क्या है, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ मैं सुन रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भारत निर्वाचन आयोग ने 75 साल के बाद जैसे मतदाता सूची ऑटो टाइप की, ऑटो कट ऑफ क्या बनाया है, क्या दान देने वालों की कमी नहीं है भारत में, मतलब खून दान देने वालों की, तो क्या कुछ ऐसा कोई नंबर पार्टिकुलर जो बहुत जल्दी सूचना मिल जाए, क्योंकि कोई अगर दिल्ली में बैठा है और जम्मू कश्मीर में कोई घटना हो रही है तो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, देने वालों की कमी नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा टेक्निक?
जी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, डॉक्टर मेघा इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी देंगी।
ज्योतिष ये मैं ये बताना चाहूँगी कि एक ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास हमारे पास डेटाबेस है वॉलेंटरी ब्लड डोनर्स का, जिसमें हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन है, और ये नंबर जिस तरह से भारत सरकार कंटिन्यूसली प्रयास कर रही है ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में, तो ये नंबर आने वाले टाइम में भी और बढ़ेंगे। तो ये जो डोनर्स की डिपॉजिटरी है वो डेटाबेस है हमारे पास, और स्टेट के पास भी हम इसको इसके साथ लिंक कर देते हैं, तो जब भी किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम इमिडिएटली ई रक्तकोश की पोर्टल की इंफॉर्मेशन के बेस पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं।
आगरा से राजू लवानिया जी हमारे साथ हैं, अब राजू जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए।
नमस्कार।
नमस्कार जी, प्रश्न पूछिए आप।
निखिल जी नमस्कार
जी, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछिए।
धन्यवाद, और दोनों लोग सबको मेरी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ब्लड बैंक से भी ब्लड लाके पेशेंट को चढ़ाते हैं, और बाहर से कुछ लोग जो है वो डोनेट किया हुआ ब्लड चढ़ाते हैं, तो कभी कभी देखने में आता है कि पेशेंट हालत और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, या इन्फेक्शन हो गया, या हो सकता है उसकी जान भी जा सकती है, तो ये होता किस लिए और इसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जी, डॉक्टर गोपाल आपको और ज्यादा जानकारी देंगे इस पर।
राजू जी, इसमें कोई फर्क नहीं होता है कि आप ब्लड बैंक से ब्लड लाएं या जो स्वैच्छिक रक्तदाता बाहर ब्लड डोनेट करते हैं, वो भी ब्लड आपका अल्टीमेटली ब्लड बैंक में ही जाता है और वहाँ उसका अच्छी तरह से जाँच की जाती है। तो ब्लड में इन्फेक्शन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम रक्तदाता को अच्छे से जांच करते हैं। उसके अलावा ब्लड बैंक में जब रक्त को हम आगे प्रोसेस करते हैं तो पूरी सावधानियां बरती जाती हैं ताकि रक्त में कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं हो जिसकी वजह से मरीज को कोई दिक्कत हो, तो ऐसा नहीं होता है।
दिल्ली से केशव हमारे आज के अगले श्रोता है जो अपना प्रश्न पूछेंगे। केशव जी,
मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ। दो सवाल है छोटे से। जैसे पहला सवाल ये, जैसे हमने ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेटर जो हमारे को कार्ड देंगे कोई, जैसे अगर हमें किसी को हमारे रिलेटिव को ब्लड चाहिए इमरजेंसी पड़ जाए तो वो हमें मिलेगा दोबारा या नहीं? और दूसरा सवाल ये है, जैसे कि कोई ब्लड डोनेट करने आता है उसको कोई भी बीमारी हो, अगर वो ब्लड डोनेट करके चला जाए, अगर वो ब्लड दूसरे को हम देते हैं तो क्या वो बीमारी उसमें आ सकती है या नहीं?
जी डॉक्टर बताइए।
जी पहले सवाल तो आपका ये है कि अगर आप रक्तदान करते हैं तो कोई आपको कार्ड मिलता है। जी हाँ, आप किसी भी रक्तदान केंद्र में रक्तदान करेंगे तो आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें आपकी ये होता है कि आपको या आपके भी किसी भी रिश्तेदार को जरूरत होती है तो अगले एक साल तक आप उस कार्ड को इस्तेमाल करके आप उसके लिए रक्त ले सकते हैं।
और इन्होंने ये भी पूछा था कि बीमारी अगर किसी रक्तदाता को है तो रक्तग्राही को हो सकती है नहीं?
हाँ, तो उसके लिए कौन सी प्रकार की बीमारी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी रक्तदाता जो आप एड्स है, एचआईवी है, हेपेटाइटिस है, तो वो जो है वो रक्त के थ्रू आपके मरीज को भी जा सकती है। लेकिन उसके लिए हम अपने रक्तदान केंद्र में पहले टेस्ट करते हैं और हमें पूरी तरह से अश्योर करते हैं कि जो आपके रक्त हैं वो उन बीमारियों से फ्री हो। बट जैसे आपको कोई हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो वो आपके रक्त मरीज को उस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वो बीमारी टू बीमारी अलग अलग फर्क,
यानी कि अलग अलग बीमारी पर निर्भर करता है कि व्यक्ति रक्तदान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दवा ले रहा है किसी भी तरह की, आजकल लोग कोई एलोपैथी की कोई दवा ले रहा है या होम्योपैथी की कोई दवा ले रहा है या फिर आयुर्वेद का भी आजकल लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको अगर रक्तदान करना है तो उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए या फिर किस तरह की जानकारी उनके पास होनी चाहिए?
ये है कि अगर कोई होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की दवाई ले रहा है तो आप जब रक्तदान करने जाएं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी बीमारी क्या है, क्योंकि उन दवाइयों का रक्त पे या रक्त से आगे जिस मरीज को चढ़ता है उस पे जो इफेक्ट है वो अभी तक देखा नहीं गया है, अभी तक उसकी जांच नहीं करी गई है
जी।
और जो एलोपैथी है, एलोपैथी में ये है कि हमारे पास उसकी लिस्ट होती है कि कौन सी दवाई पे हम आप रक्तदान कर सकते हैं, कौन सी दवाई पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिंपल आपके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप ओरल दवाई ले रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आप ओरल दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, तो आप उसमें रक्तदान कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर दिल की बीमारी है उसकी दवाई ले रहे हैं या आपके कोई कैंसर है उसकी भी दवाई ले रहे हैं तो आप उस कंडीशन में रक्तदान नहीं कर सकते हैं।
ये जो रक्तदान संक्रमित बीमारियों के बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने 5 टेस्ट को कंपलसरी करने का सभी ब्लड सेंटर्स को दिशा निर्देश दिया है, जिसमें है हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी और सिफिलिस और मलेरिया। तो अगर कोई ब्लड सेंटर पे जाके ब्लड डोनेट करता है तो जो डोनर होता है उसकी ये 5 जांच उस ब्लड सेंटर में पहले की जाती है। अगर ये अगर निगेटिव है तभी दूसरे को उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ये भारत सरकार ने ये कंपलसरी किया है सभी के लिए,
यानी कि रक्त चढ़ाए जाने से पहले उसकी प्रॉपर जांच कर ली जाती है ताकि कोई समस्या आने
ताकि ये 5 बीमारियों के लिए जो मैंने अभी बताया है।
और महुआ उत्तर प्रदेश से प्रेमचंद्र स्वर्णकार जी हमारे साथ हैं। जी प्रेमचंद, आपका प्रश्न क्या है?
पहला प्रश्न मेरा ये था, मेरे पिताजी को एक डोनर ने ब्लड दिया और देने के बाद वो तुरंत बेहोश हो गया था, तो डॉक्टर ने उनको देखा, बीपी वगैरह जांच किया, बोले थोड़ी देर में सामान्य हो जाएंगे और थोड़ी देर बाद वो सामान्य हो गया। तो ये किस कारण से होता है
जी?
और दूसरा प्रश्न ये है मेरा कि जो रेयर ब्लड ग्रुप है उनका ब्लड मिलता कम है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप के डोनर से जो ब्लड लिया जाए वो उसको ड्रोन के माध्यम से पेशेंट के पास भेजने, क्योंकि दूर भी हो सकता है वो मरीज और डोनर दूर हो सकता है, तो ये सुविधा शुरू की जाए, सरकार से मांग की जाए इस क्षेत्र में इस सुविधा को बढ़ाया जाए
जी। डॉक्टर गोपाल
जी, तो आपका पहला प्रश्न है कि रक्तदान के बाद जो रक्तदाता है वो बेहोश हो गया था, तो ये बहुत ही मतलब ट्रम कंडीशंस में कभी कभी होता है कि अगर रक्तदाता पूरी तरह से सोया नहीं हो या लंबी दूरी का रास्ता तय करके रक्तदान करने आया हो, उसने 4 घंटे से पहले कुछ खाया नहीं हो या उसने अच्छे से पानी नहीं पिया हो, या हो सकता है वो पहली बार रक्तदान कर रहा है और वो घबरा गया है सुई को देख के या रक्त को देखते, तो उन कंडीशन में कभी कभी वो बेहोश हो सकता है। लेकिन ये सामान्य कंडीशन है, आपका विद इन 1 or 2 सेकंड में या 60 सेकंड में रक्तदाता वापस आपका नॉर्मल हो जाता है, उसका फिर रक्तदान केंद्र में अच्छे से ख्याल रखा जाता है और उसको अच्छे से संतुष्ट करके ही वहां से रक्तदान केंद्र से भेजा जाता है।
डॉक्टर मेगा, थैलेसीमिया और सिकल सेल की हम यहाँ पर जरूर बात करेंगे, दो ऐसी मतलब ये ऐसी विषय है जिन पर काफी आजकल बातचीत होती, काफी चर्चा होती है और रक्तदान से ही संबंधित ये दोनों चीजें हैं, तो इस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी?
जैसे प्रारंभ में ही डॉक्टर गोपाल सर ने बताया था कि जो डिलीवरी के टाइम पे या जब भी कोई ट्रोमा हो जाता है, मेजर सर्जरी होती है, इनके मुकाबले अगर हम थैलेसीमिया की बात करें और मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो आज के तारीख में पूरा जो ब्लड डोनेशन मतलब जो रक्तदान हो रक्त को देना पड़ रहा है वो थैलेसीमिया पेशेंट को देना पड़ रहा है। 40-50% ऑन एन एवरेज अगर हमारा 1.2 लाख अगर हमारा कलेक्ट होता है तो उसका इस पे मंथली तो उसका 50% हमारा ब्लड जाता है थैलेसीमिया पेशेंट्स को, उनको ऑन एन एवरेज 3-4 वीक्स के इंटरवल में कंटिन्यूसली रक्तदान ब्लड चढ़ाना पड़ता है उन पेशेंट्स के लिए। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि रक्त जो है ये कहीं मार्केट में वैसे प्रोडक्ट तो है नहीं कि आप उसको खरीद लोगे, कोई रक्तदान करेगा तभी आपको रक्त मिलेगा, तो इसलिए हमें हम सबको आगे बढ़ के रक्तदान के ये जो मुहिम है इसमें हम सबको अपना जो प्रयास है वो करते रहना चाहिए,
यानी बढ़ावा देना चाहिए। रायबरेली से रामाशंकर हमारे साथ हैं। रामाशंकर जी, प्रश्न क्या है आपका?
नमस्कार। पर मैं ये कहना चाहता था कि रक्तदाता को एक तो रोगग्रस्त और निरोगी काया किस टाइप के लोग जो है रक्तदान कर सकते?
वैसे हम लोग इस पर काफी बात कर चुके हैं डॉक्टर गोपाल, फिर भी और जानकारी अगर साझा करें आप।
जो भी रक्तदाता हैं वो 18 से 65 साल की उम्र में है और पूरी तरह से निरोगी होना चाहिए, जैसे उसको कोई लंबा इन्फेक्शंस नहीं होना चाहिए या कोई कैंसर नहीं होना चाहिए या दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए, मिर्गी का दौरा नहीं होना चाहिए, और तो अगर उसको कहीं बॉडी में पूरी तरह से कहीं पे भी ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो आराम से रक्तदान कर सकता है।
मथुरा से जितिन हमारे साथ हैं। जितिन जी, आपका सवाल क्या है? जितिन जी सवाल पूछिए आपका। डॉक्टर गोपाल, एक बड़ी बात भी हाल फिलहाल में ही सामने आई है कि टैटू बनवाने के बाद लोगों को रक्तदान नहीं करना चाहिए, ऐसा सुनने में आया है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर क्या क्लियरेंस होना चाहिए?
जी, ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, वैसे पहले से ही चल रहा है
जी।
क्योंकि टैटू आजकल वैसे हमारे देश में स्पेशली टैटू मेले में बनाए जाते हैं या रोड साइड कहीं पे बनाए जाते हैं, और टैटू बनाने वाले कई बार जो नीडल होती है वो रिपीटेडली एक लोज से दूसरे लोज में वही नीडल यूज़ करते हैं, उस नीडल की वजह से जैसे मैडम ने कहा कि जो 5 बीमारियां होती है, हेपेटाइटिस है, HIV है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, तो इसीलिए सरकार जो गाइडलाइन बनाई है सरकार ने उसमें ये प्रिकॉशन रखा गया कि अगर आपने टैटू बनाया है पिछले 1 साल में तो आप रक्तदान नहीं कर सकते, ताकि अगर उस आपको कोई बीमारी आई है उस निडल की वजह से तो उसके सिम्टम आप में आ जाएंगे और पता चल जाएगा।
और इस बीच आकाश मोतिहारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, जल्दी आपका सवाल पूछिए।
नमस्कार जी।
जी, सवाल पूछिए जल्दी से।
बुखार की हालत में खून दे सकते हैं कि नहीं जी?
जी नहीं, नहीं दे सकते। बुखार की हालत में जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है आप खून नहीं दे सकते।
डॉक्टर मेघा, बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा, तो आप श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो रक्तदान के लिए प्रेरित हों?
मैं सभी को यही निवेदन करना चाहूंगी कि ये मानवता का एक नेक कार्य है और आप सब आइए और इस काम के लिए हम सब मिलके रेगुलरली नियमित रूप से हम रक्तदान करें ताकि हम किसी के जीवन की ज्योत जला सके। और हमारे ई रक्तकोश पोर्टल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं।
तो श्रोताओं, इसके साथ ही पब्लिक स्पीक कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की इजाजत दीजिए। डॉक्टर मेघा और डॉक्टर गोपाल, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने श्रोताओं के तमाम प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया।
धन्यवाद।
तो श्रोताओं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।